शायद जन्मांतरों की एक अव्यतीत स्मृति की तरह तुम मेरे भीतर किसी अबूझ उपत्यका में बहती नदी से निकली बाहर जैसे कोई फिल्मी दृश्य हो या महाभारत सीरियल का कोई अंश। मैं वितस्ता हूं, कहा तुमने मुझसे। लगा मुझे समयों के पार से बह रहा मैं अविगलित बर्फ के तूदे सा तुम में स्पंदित हुआ मैं, और मैं शिव हूं, कहा किसी ने मेरे भीतर से, जैसे क्षणांश में पहचानते हुए तुम्हें मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे निर्वैयक्तिक क्षण में क्या मैं जाग रहा था सच में या नींद में कहीं घूमने निकला था पैदल किसी पुराख्यान की ओर, या कि सपने में देख रहा था एक स्वप्न, या कि पता नहीं वो क्या था। और मैं देख रहा था अपना कविता संग्रह तुम्हारे सुकोमल हाथों में, जो एक दिन विसर्जित किया था मैंने तुम में एक जलावतन कवि की भेंट सा। ये कितने बड़े और सच्चे किसी नोबेल पुरस्कार मिलने जैसी बात थी कि मेरी कविताओं की पुस्तक तुमने संभाल कर रखी थी। तुम मेरे साथ चली आई मेरे तंबू घर में, जो एक शरणार्थी कैंप में था जम्मू में। मैं तुम्हें लौटाना चाह रहा था वहीं जहां तुम थी बह रही युगों से, क्योंकि जगह नहीं थी मेरे तंबू में जहां रख लेता मैं तुम्हें एक अतिथि सा, करता समुचित सत्कार, उतारता आरती द्वार पर घर के। तीनों नहीं थे हमारे पास, न घर न आतिथ्य का सामान न घर का द्वार ही। एक उजाड़ था शरणार्थी जीवन का सब तरफ, और तुम थी कि चली ही आ रही थी पीछे पीछे। तभी किसी मोड़ पर मैंने तुम्हारे पांवों में छाले पड़े देखे, हैरत हुई मुझे, और तुम बोली, भूल गए ओ लंपट, ओ कपटेश्वर, ओ झूठे, याद नहीं मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। हर मुख की यात्रा में अकेली बावरी में पूछती जिस तिस से पेड़ पक्षियों से तुम्हारे बारे में, चढ़ी भूतेश्वर पर्वत की खड़ी चढ़ाई और पकड़ा था रंगे हाथ तुम्हें गुलछर्रे उड़ाते शिरोधार्य प्रियतमा के साथ। मैं समझ गया था अभिशाप जन्मांतरों का, जिसमें लेकिन गुम्फित था आज तुम्हारा आना मेरे साथ भी जलावतनी में, या कि हरमुख यात्रा पर लिए जा रहा हूं मैं जहां सिर्फ तुम्हारी ही जगह है बाट जोहती। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब हम समाज में महिला पुरुष के समान अधिकारों की बात करते हैं, तो ये चर्चा तब तक अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम कश्मीर दर्शन की बात ना करें, क्योंकि कश्मीर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो शैव दर्शन है, शाक्त दर्शन है, उसमें स्त्री सम्मान, उसकी स्वाधीनता की जो बात है, वो और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और इस विषय पर संवाद करने के लिए आज हमारे साथ समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अग्निशेखर जी होंगे, जिनकी शख्सियत से हम सब परिचित हैं, और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए उनके अतिरिक्त किसी और का नाम मेरे जहन में आया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब अग्निशेखर जी को ही सुनते हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका चुभन के पटल पर।
आपका भी स्वागत, नमस्कार।
कैसे हैं सर आप?
मैं बढ़िया हूँ, और आप कैसी हैं? आप सब कैसे हैं, सब परिवार?
हम भी अच्छे सर, आपका आशीर्वाद है।
चलिए, अच्छी बात है आपने याद किया।
जी सर, याद तो हम हमेशा करते हैं सर आपको।
बिना याद किए, और याद की एक निरंतरता होती है, और उस स्मृति की निरंतरता का नाम ही हमारा जीवन होता है। हम स्मृतियों से कभी कट नहीं सकते
जी
हैं।
सर, बिल्कुल
और आज हमारे समय में सबसे ज्यादा खतरा जो है वो है स्मृतियों के लुट जाने का। स्मृतियां लूट ली जाती हैं और हम हमें एक स्मृति से विच्छिन्न करके जीने को जो अभिशप्त किया जाता है, इसलिए भी हमें एक दूसरे को, मित्रों को, बंधुओं बांधवों को, सबको, अच्छे लोगों को याद करते रहना चाहिए।
जी सर, आप भी करते रहते हैं, मुझे भी आपने याद किया था इस बार, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन।
अच्छी बात, आपने आज कैसे याद किया
और
मुझे?
सर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम ही है लैंगिक समानता, यानी
जी
समाज में महिला पुरुष के समान अधिकार। और सर,
जी
स्त्री पुरुष समानता और स्त्री सम्मान की बात जो कश्मीर दर्शन में, वो विश्व में कहीं भी नहीं है।
जी जी
इसलिए सर, आज इस संदर्भ में आपको सुनना, आपके विचार जानना मेरे और हमारे श्रोताओं के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होंगे। तो इसलिए सर, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें और आज मैं सिर्फ आपको सुनूंगी, ना मुझे कुछ पूछना है ना कहना है, आप अपने विचार रखें सर।
ये जो आपने मुझे स्वतंत्रता या स्वाधीनता दी ना, और ये एक आयु में तुम बच्ची हो लेकिन एक स्त्री हो, और एक स्त्री एक पुरुष को इतनी स्वाधीनता देता है, और ये भी मेरे लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विषय हो सकता है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं,
जी सर,
और कश्मीर, और कश्मीर की जो पृष्ठभूमि सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक स्वराज्य जो उसका है, उसमें जो दर्शन है, विशेषकर शैव दर्शन, शाक्त, या हमारे यहाँ बौद्ध भी रहा है, नाग संस्कृति रही है,
जी
तो जब याद करता हूं तो उसमें जो स्त्री केंद्र केंद्र में है, तो वो कैसी स्त्री है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी स्वायत्तता है नहीं है, अगर है तो कैसी है, इन सब पर विचार करने के लिए आपने मुझे एक पुरुष के नाते, जो एक लेखक है, जो एक नागरिक भी है, और महिला दिवस पर बोलने के लिए, यानी मैं अपने विचार रखने के लिए आपने जो अवसर मुझे दिया, ये भी एक बहुत ही प्रेरक तुम्हारी पहल है, और
जी
मैं आप सबको इसके लिए साधुवाद देता हूं। और चूंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और मैं इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा, जो कि 8 मार्च 1917 में पहले युद्ध के दौरान, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था,
जी
तब रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग की थी, ब्रेड एंड पीस की। तो कालांतर में यही दिवस फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसे हम कहते हैं, और जो एक परंपरा बनी है अपने देश में, इस विश्व भर में, कि इस दिन हम विचार करें और स्त्री की वर्तमान स्थिति पर उसके योगदान को, जो कि सामाजिक स्तर पर देखा जाना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, राजनीतिक स्तर पर, या जिसे कहते हैं ना समाज, आर्थिक पहलुओं पर स्त्री का योगदान, उसे एकदम याद करते रहना चाहिए। करते रहने का भी दिन है, और साथ में उसकी वर्तमान स्थिति और हमारे समाज और राजनीतिक स्तर पर उसका स्थान क्या है, क्या हालत है, कितनी सुरक्षित है, शिक्षा की दर कितनी है, स्वास्थ्य को लेकर के कितनी चिंताएं हैं इस राज्य में, या भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भागीदारी का भी मूल्यांकन, बार बार मूल्यांकन, यानी पुनर्मूल्यांकन करने का भी दिन ये होता है।
जी
और इस तरह मैं समझता हूं कि ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस, जिसे आप कह रहे हैं, स्त्री के साथ भेदभाव जो होते रहे हैं, जो अभी भी बहुत मात्रा में हो रहे हैं, उसके विरोध का भी ये दिवस गिना जाता है। यानी स्त्री के साथ जो हिंसाचार है, बलात्कार, उसके विरोध का भी दिवस है। तो विरोध दिवस कहने का अर्थ है कि हम उन कारणों में भी जाना चाहते हैं कि क्यों ऐसा सब होता रहा है। और इस दृष्टि से मैं, चूंकि आपने एकदम कश्मीर के संदर्भ में और उस पृष्ठभूमि से मुझे जोड़ा, तो इसलिए मैं उन सब बातों को ज्यादा नहीं लूंगा जो कि सर्वमान्य हैं, जानते हैं लोग, और मुझे चूंकि आपने इस पर बोलने के लिए कहा
जी
तो
जी
मैं इसे दो स्तरों पे खुद को देखता हूं। यानी एक तो नागरिक के स्तर पे, नागरिक के नाते मैं कैसा सोचता हूँ, पुरुष नागरिक के नाते, और दूसरा एक साहित्यकार के नाते भी, क्योंकि मैं कैसे देखता हूँ। जैसे बहुत ही सामान्यकरण, सरलीकरण करें तो स्त्री स्वातंत्र विमर्श की बहुत बात होती है, और इसके कई पक्ष हैं, साहित्य लिखा जा रहा है इसको लेकर, अधिकारों की बात है, समता मूलक समाज में उनके स्थान की बात है, ये तो सही है। लेकिन मुझे जो लगता है कि हम कहीं ना कहीं भारतीय संदर्भ में अपनी परंपराओं से, अपने जो हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक सभ्यता मूलक और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सांस्कृतिक स्वराज्य रहा है इस देश में, उससे हम छिटक कर जब बात देखते हैं तो हम अभिशप्त हो जाते हैं। जो पाश्चात्य उपकरण है स्त्री को देखने के, स्त्री स्वातंत्र्य को देखने के, तो हम जाहिर है कि उन्हीं उपकरणों से देखते हैं, वो देखना चाहिए। लेकिन भारत, सभ्यतागत भारत स्त्री को कैसे देखता है, प्रश्न ये है। और जब इस प्रश्न की तरफ हम लौटे हैं तो जाहिर है कि हमको जिसे हम भारतीय मनीषा कहते हैं, भारत में जो समाज का विकास हुआ है और जो धर्म का विकास हुआ है, जो अध्यात्म का प्रसार हुआ है, जो यहाँ कृषि संस्कृति है भी और रही भी है, उसके संदर्भ में हमारे जो नैतिक मूल्य समय समय पर रहे हैं, स्त्री को लेकर के हमारी दृष्टि क्या रही है, इस पर बहुत जरूरी है कि हम मूल्यांकन एक बार फिर से करते रहें। चूंकि मैं इस विषय को लेकर के आपने मेरी पृष्ठभूमि का दिया, तो मैंने जब ये कहा कि कश्मीर की स्त्री का जो स्थान है समाज में, या जो स्थान रहा है
जी,
इतिहास की दृष्टि से देखें, और इतिहास की दृष्टि से जिन्होंने कश्मीरी स्त्री को नहीं देखा है, उनके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, उन्हें नीलमत पुराण, जो हमारा स्थानीय पुराण है संस्कृतियों का, को समझने का, हमारा जो विमर्श है, लोक विमर्श उसमें है, संस्कृति मूलक समाज का, इतिहास का, लोग कैसे रहते थे, लोगों की स्थिति क्या थी, उसमें स्त्री का स्थान, वो पढ़ना चाहिए। लोगों को कलहण की राजतरंगिणी का अवलोकन करना चाहिए, या जितनी भी राजतरंगिणियां हमारे पास हैं, जौन राज है, शुक हैं, श्रीवर हैं, प्राज्यभट हैं, और उसके बाद जो मैं कश्मीर के संदर्भ में आपसे ये भी कहूं कि इसी बहाने मैं आपको आपसे साझा करता हूं कि मैं एक पुस्तक मैंने लिखी है, उसके एक या दो अध्याय बाकी हैं, कश्मीर की स्त्री के 5000 वर्ष उसका शीर्षक रहेगा। यानी मैंने 5000 वर्ष का एक कालावधि में स्त्री को देखा है, और वो जो स्त्री को देखा है तो कैसे कैसे देखा है, उसकी स्थिति को, उसके उसके महत्व को, वो मैंने इतिहास में गया हूं, इतिहास को खंगाला है, क्योंकि सप्रमाण बात करनी होती है, सप्रमाण बोलना होता है, तो इसलिए कपोल कल्पना से कोई काम नहीं चलता है, और श्री लिजी लिजी भावुकता में बात कहें, ऐसा कुछ नहीं, सप्रमाण में मैं इतिहास में गया हूं उस पुस्तक में। और इतना ही नहीं, इतिहास पूर्व जो एक प्राक इतिहास होता है, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, वहां मैंने खंगाला है इस प्रश्न को। मैंने आख्यान और उपाख्यानों में देखा है स्त्री को कैसे आई है, जिसे हम पाश्चात्य इसमें शब्दावली में मिथक कहते हैं, हमारे यहाँ आख्यान होता है, पुराणों में, पौराणिक चरित्रों में, कश्मीर के संदर्भ में कह रहा हूं, स्त्री को कैसे देखा गया है, स्त्री जो लोकवार्ता में कैसे है, स्त्री वहां वर्णित कश्मीर की, या कहावतों में, मुहावरों में स्त्री को लेकर के क्या कुछ लिखा गया है, कहा गया है, इसका मैंने बहुत ही विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक उसमें पड़ताल की है। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि स्त्री का वो स्थान समाज में आप जानकर हैरान होंगी, जिसके लिए हमारे समकाल, हमारे वर्तमान समय यानी 19वीं शताब्दी से इधर की लेडीजों, जिन अधिकारों की बात के लिए स्त्रियां विश्वभर में, फिर अपने भारत में या फिर कहीं भी लड़ रही हैं, वो सारे अधिकार, वो सारी सत्ता, शक्ति सत्ता के केंद्र में स्त्री रही है, कश्मीर की स्त्री रही है। कश्मीर की स्त्री, आप नीलमत पुराण जब देखोगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये स्त्री न केवल एक घर का मूलाधार है, घर का निर्माण करती है, संबंधों का निर्माण करती है, न केवल ये कृषि परक समाज की की वो मेरुदंड है, न केवल ये राजनीति में दखल देती है, राजनीतिक विचार उसके होते हैं, और इतना आप जान के हैरान हो जाओगे, ये राजनयिक भी हैं। कश्मीर के इतिहास में ऐसी कई संदर्भ आपको मिलेंगे जहां आपको कश्मीर की स्त्री राजनयिक के रूप में, डिप्लोमेट के रूप में हैं, ये दूत हैं, ये यात्री हैं, और बीहड़ यात्राएं करती हैं, ये जिसे आप कहते हैं ना यायावर, यायावरी भी करती हैं, ये वेश्या भी हैं, ये अपने क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र जो महाकवि हुए संस्कृत के, उनके साहित्य में देखिए, समय मात्रिका देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां स्त्री मंदिरों में है, जहां स्त्री वेश्या है, और वेश्याओं का स्टेटस क्या है वो भी आपको बिल्कुल उसमें क्षेमेंद्र कहेंगे, या कुट्टणी मत पुराण है हमारे पास दामोदर गुप्त का। और मैं इसलिए आपसे ये कर रहा हूं कि स्त्री के विविध पक्ष जो हैं, स्त्री स्पोर्ट्स में, खेल कूद में कैसे है। आजकल आप वेलेंटाइन बहुत मना रहे हैं ना, आया तो पश्चिम से ही है, ठीक है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग मना रहे हैं, कुछ लोग कुछ, लेकिन जो मना रहे हैं उन्हें, या जो लोग विरोध कर रहे हैं, दोनों को अपनी परंपराओं की तरफ भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा रही है मदन त्रयोदशी। मदन त्रयोदशी में, जिसे आप आज की भाषा में वैलेंटाइन डे कह सकते हैं, ये स्त्रियों का दिन है, ये पति पत्नी का दिन है। उस दिन निर्देश है कि पति को या उसके मंगेतर को या उसके प्रेमी को एक स्त्री के से कैसे पेश आना चाहिए, कैसे उपहार देने चाहिए, कैसे क्रीड़ाएं करनी चाहिए, जल क्रीड़ाएं करनी चाहिए, व्यवहार करने चाहिए, गिफ्ट देने चाहिए। तो ये वही समाज करेगा ना जो उन्मुक्त होगा, ये वही समाज करेगा जिसमें ऐसे टैबू, पूर्वाग्रह, दुराग्रह नहीं है, जिसमें स्त्री दोयम दर्जे की नागरिक नहीं है, और जिसमें स्त्री समान ही नहीं, कहीं कहीं तो कभी कभी किन्हीं कालखंडों में ये अधिष्ठाता है समाज की, ये पुरुष की भी अधिष्ठात्री हैं। यानी जब आप अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री उसके होने की बात करते हैं, तब आप शाक्त धर्म में जाते हैं। शाक्त धर्म में स्त्री जो है देवी के रूप में वो अधिष्ठाता हैं, और शिव पुरुष के रूप में उसके अधीन हैं। यानी अधिष्ठात्री जो देवी स्त्री हैं, वो तय करती हैं, वो निर्णय करती हैं जीवन का, समाज का, राजनीति का, देश काल का, ब्रह्मांड के प्रश्नों का, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़े प्रश्नों का जो निर्णय है, वो कश्मीर की स्त्री वहां शक्ति के रूप में करती हैं। और यहां तक कि ये जो शक्ति संप्रदाय है कश्मीर का, शाक्त धर्म जिसे कहते हैं, उसमें प्रधानता स्त्री की है। यहां मुझे याद आया, मैं थोड़ा सा प्रसंगेतर हो जाऊंगा प्रसंग से, क्योंकि कश्मीर नाम ही एक स्त्री का नाम है, ये पता होना चाहिए आपको। दो व्याख्याएं हैं कश्मीर नाम की, तीन व्याख्याएं हैं कि कश्मीर पहले सतीसर था, और उसमें एक दैत्य जलोद्भव पैदा हुआ जिसने अत्याचार किया, उसको मारने के लिए, वध करने के लिए भगवान विष्णु, शिव वगैरह देव सेनाएं, उन्होंने आक्रमण किया, और उस सतीसर का जो की जलराशि जो थी उसको निकाल बाहर करने के लिए पहाड़ को काटा गया, ढहा दिया, काट दिया गया ताकि पानी बाहर निकला, और जो भूमि नहीं निकली उसका नाम कश्यप ऋषि के प्रयासों की दृष्टि से कश्यप मर यानी कश्मीर हुआ। ये एक व्याख्या है, और जब आप उस व्याख्या से चलें तो फिर ये नाम पुरुष प्रधान है कश्यप ऋषि के नाम से। लेकिन दूसरा इसका एक पक्ष ये भी है भाषा वैज्ञानिक, जिसमें जिसमें आपका भू वैज्ञानिक जियो पोलिटिकल मीनिंग भी है, यानी जब पानी निकाला गया बाहर तो कम वारी अश्मना ईर, यानी जो पानी है जिसको जल का निकास हुआ पत्थरों से यानी पर्वत से पानी का निकास जब हुआ जो पीछे भूमि उभरी उसका नाम कश्मीर, ये तो उसकी दूसरी व्याख्या है। लेकिन यहाँ जो मुझे व्याख्या याद आई जो प्रसंग वश बहुत ही प्रसंगानुकूल व्याख्या है जिसे मैं मानता हूँ, मैं स्वयं मानता हूँ एक विद्यार्थी के नाते, और कश्मीरी साहित्य इतिहास का एक विनम्र अध्येता होने के नाते, वो ये है कि कश्मीरा देवी का नाम है, कश्मीरा एक देवी है और कश्मीर की एक अधिष्ठात्री देवी है कश्मीरा। अब नीलमत पुराण कहता है कि यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, जो उमा है जो माता उमा है सैव कश्मीरा, वही कश्मीरा है, यानी कश्मीरा जो है वो उमा का अवतार है, यानी उमा है, और ये उमा यानी पार्वती
जी।
और इसीलिए जब भगवान कृष्ण कश्मीर आते हैं, कश्मीर की मैं कहना चाहूंगा दुनिया की ज्ञात सबसे प्रथम साम्राज्ञी कश्मीर की स्त्री थी जिसका नाम था यशोवती। यशोवती का राज्यारोहण के अवसर पर श्री कृष्ण कश्मीर आते हैं, ये आख्यान है, ये नीलमत पुराण में है, ये कलहन की राजतरंगिणी में है और लोक परंपरा में है। जब कश्मीर चले आते हैं भगवान कृष्ण तब वो कश्मीर के स्तुति कश्मीर की स्तुति प्रशंसा में ये कहते हैं कि कश्मीर जो अपने आप में है ये पार्वती है। अब ये बात पुष्ट होती है हमारे आख्यान के साथ कि यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, जो उमा है जो उमा देवी है वही कश्मीरा है, और कश्मीरा यानी उमा यानी पार्वती, तो जब पार्वती है तो वही कश्मीरा देवी अपने में कश्मीर का रूप है। ये हमारी परंपरा में है, यानी जहां की भूमि ही एक अवतार हो, ये ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर में ही ऐसा हुआ, पूरे सनातन वैदिक दृष्टि से भी देखें तो वहां माता को भूमि कहा गया, भूमि को माता कहा गया है, ये तो हमारी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, हमारी चेतना में है। क्या है कि माता देवी पुत्रो अहम पृथिव्याः, हे पृथ्वी मैं तुम्हारा पुत्र हूं तुम मेरी माता हो, यानी भूमि को माँ का जो दर्जा है वो यहाँ की संस्कृति देती है, यहाँ की सभ्यता देती है, जिससे मातृभूमि बनती है, मदरलैंड बनता है, यूरोप में तो कहीं फादरलैंड भी होता है, होमलैंड होता है, हमारे यहाँ मूल मातृभूमि है। तो मातृभूमि को माता कहना और उसमें कश्मीर को कश्मीरा देवी, फिर कश्मीरा देवी अगर अब स्त्री प्रधान ये भूखंड है भूमि है तो वहां मैंने ये भी देखा है, अब नदियों के कश्मीर की नदियों के लीजिए आख्यान या महात्म्य, आप ऋतुएं लीजिए, आप भाषा लीजिए, भाषा में जो वर्गीकरण एक होता है लिंग पुरुष पुलिंग और स्त्रीलिंग, आप शब्दों में देखिए तो स्त्रीलिंग शब्द ज्यादा बताए जाते हैं, यानी प्रधानता है। फिर आपके दर्शन में देवियों में जो कश्मीर में अपनी स्थानीय देवियां अपनी हैं, तो ये जो देवियां मैं खाली बखान नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जोड़ना चाहता हूं उसके महात्म्य को, एक पृष्ठभूमि से आपने मुझे जोड़कर बात कर रखने की बात की इसलिए बता रहा हूं। तो कश्मीर में अपनी स्थानीय देवियां बहुत हैं, यानी श्रीनगरी जिस माता श्री विद्या का केंद्र कश्मीर रहा है, और श्री विद्या का केंद्र और जहां चक्रेश्वरी हैं वो वर्तमान श्रीनगर, जब आप जाएंगे तो वहां एक हारी पर्वत है, डल झील के किनारे है, जैसे शंकराचार्य पर्वत है तो डल झील के किनारे जो हारी पर्वत है वो शारिका है, कश्मीरी में श स और ह में बदलता है, शारिका हारिका हो जाती है, तो हारी यानी मैना, तो फिर वहां एक उपाख्यान है उसके साथ, ये वो जगह है जहां पर श्री चक्र है, श्री चक्रेश्वरी है और श्री विद्या का केंद्र रहा है। इसीलिए सम्राट अशोक ने, मगध के सम्राट अशोक ने कश्मीर आकर, कश्मीर उनके साम्राज्य का एक हिस्सा था, यहाँ एक श्रीनगरी बनाई थी और उनने श्रीनगरी इसी श्री विद्या जो माता का रूप है वहां उसका सम्मान करते हुए उन्होंने ये नगरी बनाई। ये तो एक संदर्भ में दूंगा। दर्शन की दृष्टि से जहां मैं कह रहा था कि शाक्त प्रधान हमारे दर्शन में जो भेदभाव नहीं है, भेदभाव ही नहीं, जहां उच्चतर स्थान पर स्त्री है और उनके अधीन पुरुष से आप पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, मातृसत्ताक समाज कश्मीर का रहा है। इसलिए हमारे यहाँ मातृ पूजा जबरदस्त रही है, देवियों की पूजा रही है, उसका प्रधानत्व है, प्रधानता है, प्राधान्य है उसका कश्मीर में। तो इस दृष्टि से जो अब स्वतंत्र की मैंने कहा कि वो राजनयिक होती थी, योद्धा होती थी और अश्वारोही होती थी और एकदम ये जो आप आजकल कर रहे हो मल्ल युद्ध, ये सब हमको प्रमाण मिलते हैं क्रीड़ाओं में, अलग अलग जीवन के तमाम क्षेत्रों में उनकी एक सत्ता थी। और ये तो बाद में जो अभी जब हम ये कहें कि 14वीं शताब्दी से जो पतन काल, तो कश्मीर के इतिहास में देखें तो 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद 200-250 साल बहुत खराब रहे हैं हमारे, क्योंकि वो आपस में फूट, आपस में राजा महाराजा, उसने उसके साथ संधि की, इसने इसके साथ बगावत की, षड्यंत्र किए, खड्यंत्र किए, तो वो उस काल को छोड़े तो बाकी तो स्त्री का पक्ष बहुत ही उज्ज्वल पक्ष कश्मीर के इतिहास में हमको मिलता है। एक ये तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा इसमें कश्मीर की स्त्री जितनी स्वतंत्र और स्वाधीन, दो शब्द हैं, स्वतंत्र और स्वाधीन। स्वाधीनता का मतलब है आप जब विचारों से, आपकी विचारणा में जो आपकी, हमारे यहाँ स्वातंत्र जो है, स्वातंत्र एक देवी है शैव में, शैव दर्शन में इच्छा है, स्वतंत्र शक्ति है। तो इसलिए जहां ऐसी धारणा दार्शनिक दृष्टि से रही हो, वहां की स्त्री एक कहना चाहिए कि ये तो मुझे लगता है समूचे भारत में और खासकर जो स्त्री प्रश्न को लेकर के सक्रिय लोग हैं उन्हें जानना चाहिए कश्मीर की स्त्री को, क्योंकि कश्मीर की स्त्री जो है 14वीं शताब्दी तक और कश्मीर 14वीं शताब्दी के बाद जो इतिहास में परिवर्तन आया, जो मध्य एशिया और ईरान और वहां से आक्रमणकारी आए, उनका मेन जो आक्रमण का मुख्य टारगेट होता था वो स्त्री होती थी और वो विनाश होता था संस्कृति का, स्थापत्य का, मंदिरों का, लोगों का, और मतांतरण करने का, लोगों से धर्म छुड़ाना, फोर्सफुली ये करना। लेकिन मुख्य जो उसका रहा है, तो विश्व भर में जहां जहां भी युद्ध हुए हैं, वो भी कहा जाता है ना कि स्त्री की देह पर ही खेले गए हैं, लड़े गए हैं, स्त्रियों की देह पर ही सारे युद्ध लड़े गए हैं। तो आतंकवाद जो अभी 90 से इधर आया, ये भी तो युद्ध ही है, युद्ध का एक प्रकार है। तो इस कारण, इस दृष्टि से भी देखें तो स्त्री की देह पर ही ये आतंकवाद, ये जिहाद, ये जो अलगाववाद, ये जो पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान समर्थित हुआ है, इसका शिकार भी इसलिए अधिकतर स्त्रियां ही हुई, उन्हें ही भोगना पड़ा ये सब। अब जब भोगना पड़ा तो जो स्त्रियां इधर 90 के दशक में जो कश्मीर में जिहाद और जलावतनी, निर्वासन, निष्कासन एक पूरे के पूरे समुदाय का हुआ, ऐसे समुदाय का जिसकी व्याख्या मैंने अभी की, जिसकी पृष्ठभूमि की व्याख्या मैंने की, इसको जब आना पड़ा बाहर, जब ये इसको आना पड़ा बाहर, तो फिर जो निर्माण हुआ आज 3 से ज्यादा दशक हुए हैं, यानी 32वां वर्ष चल रहा है आज, अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, देशवासियों से आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ, हमारे फिर से घर बनने लगे हैं, फिर से हमारा घर, संसार, संबंध, ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसके सबके पीछे जो निर्णयात्मक और जो एक ऐतिहासिक भूमिका है वो कश्मीर की स्त्री की ही रही है, इसी निर्वासित स्त्री की। और इस स्त्रियां वैसे भी भारतीय दृष्टि से देखें, जो समाज की धुरी होती है स्त्री, और घर परिवार की धुरी भी स्त्री होती है। ये सारे संबंध बनाए रखना, बचाए रखना, इसकी ये सारी उसका रिमोट कंट्रोल स्त्री के पास होता है। तो फिर से नए सिरे से जहां कुछ आपके पास नहीं बचा था, आप टेंटों में, तंबुओं में, सड़कों पर, इधर क्या कहते हैं, धर्मशालाओं में, गुरुद्वारों में, या खुले मैदानों में, फुटपाथों पर, स्कूल के खाली कमरों में जब आप रहने को विवश हुए, लस्त पस्त, नंगे हाथ, बेचारगी के साथ, तब जो संघर्ष वहां से शुरू हुआ, नए सिरे से हमारे सामने का संघर्ष, जीवन को बनाए बचाए रखने का, फिर पुनर्निर्माण का संघर्ष शुरू हुआ, उस पुनर्निर्माण के संघर्ष में जो मुख्य और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारी स्त्रियों ने निभाई। आपको हैरानी होगी कि जहां मैं याद करता हूँ, यहाँ जितने भी कैंप लगे थे हमारे शरणार्थी कैंप जम्मू में, उनमें एक कैंप में मैं जा रहा था, मैं शुरू के पहले दिन से एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज कार्यकर्ता के रूप में, मुझसे चूंकि ये देखा नहीं जा सकता है कि कोई बिना अकारण किसी को पीड़ित होना पड़े, उत्पीड़ित होना पड़े, जिलावत्री, मैं स्वयं से प्रश्न करता था, मैं बाहर क्यों हूं, हमको क्यों निकाला गया, जबकि मैं स्पष्ट हूं, पता है मुझे किसने निकाला, क्यों निकाला, वो चाहे, लेकिन एक फिर भी एक प्रश्न बना रहता है, हमारा कोई दोष नहीं, हमारा दोष ये कि हम बड़े उदात लोग थे, हम शिक्षावान लोग थे, हम लिखे थे, पढ़े लिखे लोग थे, हम कलाकार थे, साहित्यकार थे, आचार्य थे, हम ईमानदार लोग थे, हम कश्मीर को चाहने वाले लोग थे, प्यार करने वाले लोग थे, भारत को, धर्म को, और अपनी संस्कृति को, सभ्यता को, हमको निकाल बाहर किया। तो इन प्रश्नों से जूझते जूझते भी जो हमारा संघर्ष प्रेरित और निर्देशित होता था, ये सारे प्रश्न तो हमारी माताओं के मन में भी रहते थे, लेकिन उन्हें अतिरिक्त बोझ इस बात का था, पुनर्निर्माण का। पुरुषों ने उस पुनर्निर्माण के लिए जो बाहर, इन तंबुओं से बाहर, सड़कों पर, राजमार्गों पर, राजनीतिक मंचों पर जो सक्रियता, जो आंदोलन किए, और उसका साथ तो हमारी माताओं, स्त्रियों ने दिया। फिर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इस निर्वासन जब शुरू हुआ कश्मीर में, इस निर्वासन का जो सारा दबाव था वो था, स्त्रियों पर तो था ही था, ये हम सब जानते थे, लेकिन पुरुष लोग जो अधिकांश अपने घरों में सिमट कर रह गए थे, इतने डरे और इतने सहमे थे कि कई प्रसंग आपको ऐसे भी मिलेंगे सुनने को अधिक, कि पुरुष अपनी सिगरेट की एक डिब्बी के लिए, सब्जी के लिए, जो भी वो अपनी पत्नी को ही बाहर भेजता था, बाहर मारा जाऊंगा, यानी वहां ऐसे आतंक, ऐसे भयावह माहौल में भी बाहर सामना करने के लिए एक स्त्री जाती है, वो सौदा, सुल्फ, जो भी उसको जरूरत की चीजें वो ले आती है। फिर जब 19 जनवरी 1990 की रात आई, जब खुलम खुला ये कहा गया कि आप अपनी बहू बेटियों को, स्त्रियों को यहाँ छोड़िए, हमें ऐसा पाकिस्तान यहाँ बनाना है, और पुरुष लोग हमको ऐसे पाकिस्तान में जो कश्मीर बनेगा उसमें नहीं चाहिए, यानी सीधे सीधे स्त्री फिर केंद्र में आ गई आतंक के, और खुलम खुला घोषित रूप से। ऐसे में जो अब निर्णय लेना है, जो कश्मीर से जो हम निर्वासित हुए, जिस घर से, जिस परिवार से, वो बताइए, तुम भी एक लड़की हो, अगर तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी चाची, ताई, जो भी है, वो अपने पुरुष, जो भी उनके संबंधी हैं, पिता है, बेटा है, चाचा है, भाई है, उसका साथ नहीं देगी, तो क्या वो निकल सकते हैं?
बिल्कुल नहीं सर,
बिल्कुल नहीं निकल, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां घर की एक एक ईंट से जुड़ी होती हैं,
बिल्कुल,
घर के एक एक कमरे से, खिड़कियों से, यहाँ तक कि अपनी हांडियों से, मटकों से, संदूकचियों से, हर एक चीज से जुड़ी होती है स्त्री, पुरुष उतना नहीं जुड़ा होता है,
बिल्कुल ठीक।
तो ऐसे में मैं अपनी बात कहूँ तो जब मैंने माँ से कहा कि हमको चलना है, तो उसने पता क्या कहा, तुम बेवकूफ हो गया है, चलना है तो क्या करूं, मैं क्या करूंगी, मेरे पास 27 लिहाफे हैं, ऊपर 27 रजाइयां हैं, देखो वो किस चीजों से जुड़ी है, 27 रजाइयां हैं मेरे, नहीं, यानी वो रजाइयां वो ये सुनने में तो हंसी आती है
जी,
लेकिन उसकी भावना देखिए वो किन चीजों से जुड़ी है।
जी,
एक स्त्री अपने बच्चे के स्कूल के बस्तों के साथ, किताबों के साथ, तख्तियों के साथ, टूटी हुई पेंसिलों के साथ जुड़ी है, चप्पलों के साथ जुड़ी है, सोने, ये हर कोई हर अतिरिक्त इसके के उसके पास जो भी है। तो ऐसे में जो निर्णय हमारा हुआ, निर्णय उस निर्णय को लेने में प्रेरक शक्ति जो थी वो स्त्री थी हमारी, तो उसने वो आई। फिर यहां से जम्मू आकर के कुछ स्त्रियों ने हिम्मत की, पुरुष जा नहीं सकते थे वापस, मान लीजिए कि उन्हें बच्चे उठा के ले आए यहाँ रखे, फिर उनको लगा यार हमारे पास सामान ही कुछ नहीं है, चलो हम कोई साहस करते हैं गाड़ी लेके वहां से सामान ले आएंगे घर से जो छूटे हुए घर से
जी, जी।
और उसमें जाने वाली अधिकांश स्त्रियां थी जो अधिकांश की अधिकांश वहां मारी गई, अपहृत हुई, और आगे मैं क्या कहूं तुम समझ सकती हो। तो ये जो ये साहस था वापस जाने का भी, फिर सामान ले आने का भी, उसमें भी स्त्रियां थी। फिर जब आप नवनिर्माण करते हैं यहाँ तंबुओं में बैठकर, अब देखिए एक पूरी की पूरी पीढ़ी हमारी, हमारी माताओं की, हमारी अपनी, ये इसमें खप गई कि आने वाला बच्चा जो हमारे, या रेंगते हुए बच्चे हैं, चलने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले, इनके निर्माण में उसने अपने आप को खपा दिया। तो यहाँ भी स्त्री आगे है। अब ये यूं ही नहीं होता है। कश्मीर के संदर्भ में मैं तुमसे कहूं, 10वीं-11वीं शताब्दी में हमारे एक बड़े संस्कृत के महाकवि हुए हैं बिलहण। बिलहण यायावर थे, यायावर कवि थे। वो कश्मीर में एक जगह है पामपोर के पास, खोनमुह बोलते हैं आज उसको संस्कृत में, कलहन उसको खोनमूशा बोलता है। तो खोनमूशा से चलकर वो कवि बिलहण पूरे भारत में यात्रा करता हुआ, आज का उत्तर प्रदेश, वाराणसी, काशी होते हुए वो कर्नाट पहुंचता है, यानी कर्नाटक वर्तमान, और वहां का राजा था उस समय विक्रम। तो विक्रमांक देव चरितम वो उनका चरित लिखता है काव्य संस्कृत में। तो उस चरित में जब कवि है तो कवि अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कौन, अपने बारे में बताता है आरंभ मंगलाचरण के बाद, मैं कलहन हूँ, मेरा देश जो है, मैं जन्मभूमि मेरी कश्मीर है, और कश्मीर में भी मेरा जो गांव है खोनमूशा है, और मैं कश्मीर की जो विशेषताएं वो गिनाता है, और यहाँ बहुत प्रासंगिक है वो कहना है। कहता है कि मैं उस प्रदेश से हूँ, उस देश से हूँ, कश्मीर से हूँ, जहां की स्त्रियां प्राकृत संस्कृत और देश भाषा, प्राकृत संस्कृत और देश भाषा, ये तीनों भाषाएं धारा प्रवाह बोलती हैं। मैं उस प्रदेश से हूं जहां की स्त्रियां, वो ये नहीं कहता है जहां शहर की स्त्रियां, नगर की स्त्रियां, महानगरी स्त्रियां, कहता है मैं उस कश्मीर से हूं जहां की स्त्रियां, यानी वो एक सामान्य रूप से कहता है कि सामान्य कश्मीरी स्त्री इतनी बहुशिक्षित रही हैं परंपरा से, लोक परंपरा से, और विधिवत शास्त्र की जानकार है कि वो संस्कृत भी उसी तरह बोलती हैं सहजता से जिस तरह प्राकृत बोलती हैं, जिस तरह वो जन्म भाषा बोलती हैं। और वो ये भी कहता है कि मैं ऐसे कश्मीर से हूं जहां कविता और केसर का विलास आपको मिलेगा संसार में, अन्य कहीं भी नहीं मिलेगा। कविता और केसर का विलास जहां हो, और जहां की स्त्री, मैंने अभी कहा कि जो इतनी बहुभाषिक है, भाषाएं जानती हैं, यानी वो पढ़ी लिखी हैं, ज्ञान की भूमि से हैं, क्योंकि उनकी परंपरा में, कश्मीर की परंपरा में शारदा है, नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी, कश्मीर की मैं वास करने वाली हो तुम हे माँ शारदे, मैं तुम्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यानी जहां ज्ञान की देवी का वास हो तो वहां लोग विशारद क्यों ना हो, अगर नहीं होंगे तो वो संदेह में डाल देगा, वो अपराध है। जहां भाई स्वयं विद्या की देवी, 64 कलाओं की देवी और अखंड ब्रह्मांडीय चेतना की देवी, युद्ध की देवी शारदा न केवल ज्ञान की देवी है, शारदा युद्ध की भी देवी है। आप चूंकि हिंदी भाषा भाषी प्रदेश से हो, आल्हा उधल की जो अधिष्ठात्री देवी थी, युद्ध की देवी थी, वो शारदा ही थी। आप बांदा झांसी के पास महोबा जगह है, वहां जाइए तो वहां शारदा की का तीर्थ है, प्राचीन आल्हा उधल से जुड़ा है
जी।
आल्हा उधल जब युद्ध करने के लिए गए पहले उनकी उन्होंने की। आज भी लोक परंपरा में कहते हैं कि मैहर जो मध्य प्रदेश में है, आल्हा उधल वहां हर रात आते हैं शारदा मैया के। और ये शारदा आपको पूरे देश में कश्मीर के बाद हिमाचल, जम्मू में भी, उधमपुर में शारदा मैया है, और इसके बाद हिमाचल में है, उसके बाद ऐसे चलते चलते गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश में मैहर से होते हुए महोबा उत्तर प्रदेश के बाद आपको सुदूर दक्षिण में जो जगत गुरु शंकराचार्य ले गए शारदा पीठम उन्होंने बनाया श्रृंगेरी में, वहां उनको शारदा अम्बा बोलते हैं। ऐसा क्या कारण है कि जगत गुरु शंकराचार्य कश्मीर आकर शारदा भूमि में जाते हैं, शारदा पीठ पे जाते हैं, वहां उन्हें उपाधि मिलती है जगत गुरु की शास्त्रार्थ करने के बाद। फिर वो कश्मीर में कुछ स्तुतियां ऐसी छोड़ जाते हैं जो आज भी हम निरंतर अविच्छिन्न रूप से पूजा तीर्थों पर या बड़े बड़े अवसरों पर, शिवरात्रि पर, जो भी हो, उसका गायन होता है हमारे यहाँ। अधिकांश लोग शायद ये जानते भी नहीं है ये जगत गुरु शंकराचार्य की रचना है। लीला रब्द स्थापित लुप्ता अखिल लोकाम गौरी मम्भाम अम्बुर हाक्षी अहम मीड़े, ये बहुत बड़ी है। और ऐसा कोई कश्मीरी पंडितों का घर नहीं है जहां ये नहीं गाई जाती है, जहां स्तुति उन्हें याद न हो। तो इस तरह शारदा की भूमि कश्मीर, और ऐसी शारदा की भूमि कश्मीर जहां परंपरा में, मैंने कहा ना, प्रथम विश्व की ज्ञात साम्राज्ञी भी कश्मीरी स्त्री है यशोवती, जिनका कोरोनेशन राज्यारोहण करने के लिए स्वयं श्री कृष्णा है।
जी जी।
और इतना ही नहीं, आप हिंदी का कार्यक्रम कर रही हैं, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कालजयी रचना है राम की शक्ति पूजा।
जी।
राम की शक्ति पूजा में जिस शक्ति की पूजा राम करते हैं युद्ध के दौरान जामवंत के कहने पर, उनके मार्ग निर्देशन पर, और उनका नाम श्यामा है, और जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो उन्हें भगवान श्री राम हनुमान जी को आदेश देते हैं कि इनको ले जाकर कश्मीर में ले जाइए, और हनुमान जी उनको अपनी पीठ पर आसीन करके वायु मार्ग से कश्मीर ले आते हैं और वहां स्थापित करते हैं। जो स्थान वहां आज खीर भवानी कहलाता है, ये वही श्यामा है जिसे, जिनको लेकर के निराला जी ने वो लिखा। हालांकि निराला जी ने ऐसा कोई संदर्भ उसमें दिया नहीं है, क्योंकि वो तो कृतिवास से उन्होंने प्रेरणा ली और न उन्हें कोई आवश्यकता थी इस संदर्भ की। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, कश्मीर से हूँ, और मेरे लिए अतिरिक्त जानकारी और हर्ष का विषय है इन्हीं श्यामा को केंद्र में रखकर राम की शक्ति पूजा बहुरेखीय एक रचना रचित की है निराला जी ने। तो इन्हीं को लेकर फिर नाचो उकताहते श्यामा, स्वामी विवेकानंद जी की कविता है, निराला जी ने कहा नाचो एक बार फिर श्यामा। तो ये जो श्यामा है ये कश्मीर की एक अधिष्ठात्री देवी हैं, जैसे मैंने कहा शारदा हैं, जैसे मैंने कहा शारिका हैं, इसी तरह हमारे यहाँ ज्वाला है, इसी तरह यहाँ बाला है, व्रीडा है। तो कश्मीर पूरा शक्ति देवियों के की उपस्थिति से बिल्कुल दीप्त है, प्रज्वलित है, जगह जगह पर कलहन कहता है। वैसा कोई स्थान नहीं है कश्मीर में जहां तिल धरने की जगह नहीं, जहां तीर्थ नहीं। और तीर्थ किन का? शिव और शक्ति का। शिव प्रधान कश्मीर है, शैव प्रधान कश्मीर है, शक्ति प्रधान कश्मीर है। इसलिए कश्मीर में ही विचार विमर्श के बाद जो एक जो आप जानती हैं शैव दर्शन और शिव सूत्र हो, विज्ञान भैरव हो, या आचार्य अभिनव गुप्त का तंत्रालोक हो, हमारी इस पृष्ठभूमि में मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ जो अर्धनारीश्वर का की अवधारणा आई कि अर्धनारीश्वर कोई नर बिना नारी के पूर्ण नहीं है, कोई नारी पुरुष के बिना पूर्ण नहीं है, जिसे आप समता मूलक समाज आज कहते हो। और जो समता मूलक एक लैंगिक समता की बात की जाती है, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, जो जितनी तुम हो उतना ही मैं हूं, जितना मैं हूं उतनी ही तुम हो, मेरे बिना तुम अधूरी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अनुषंगिक हैं, शक्तियां हैं। इसीलिए कहा यह जाता है ना, आपने कई बार सुना, शिव में से शक्ति निकाल दीजिए, एक की मात्रा निकालिए तो शव हो जाता है। जब हम प्राणों का त्याग करते हैं तो शव कहलाते हैं ना, आपका कोई मूल्य नहीं रहता, आपको जल्द से जल्द घर से बाहर करके अग्नि को समर्पित किया जाता है। यानी तब तक आपका मूल्य है जब तक स्त्री है आप में, तभी तक आप हैं, आप शिव हैं, क्योंकि आपके अंदर एक शक्ति है। और अगर शक्ति है जो हम जो स्थापित है, और शक्ति क्या है, शक्ति ऊर्जा का नाम है, शक्ति रचनात्मक ऊर्जा का नाम है, ये ब्रह्मांडीय चेतना का नाम शक्ति है। आपकी छोटी छोटी शक्तियां होती हैं, छोटी छोटी ऊर्जाएं होती हैं, जिनके समुच्चय से जीवन चलता है। मैं बात कर रहा हूं, तुम बात सुन रही हो, कोई और हमारी बात सुनकर उस पर विचार कर रहा है। जो ये इच्छा होती है, इच्छा रूप कश्मीर में ये स्त्री रूप है, ये देवी है इच्छा। फिर इच्छा के लिए जो ज्ञान है, ज्ञान अपने में मैंने कहा ज्ञान देवी है। फिर क्रियाशीलता, क्रियान्वयन जिसे आप कहते हैं, यानी इच्छा कर्म और ज्ञान का समुच्चय कश्मीर में त्रिक कहलाता है। तो त्रिक दर्शन जो है, त्रिक दर्शन में जो महा त्रिपुर सुंदरी की प्रधानता है फिर वहां, और ये प्रतीक जो है ना, ये रूपक हैं, प्रतीक हैं। हमने क्या किया है, हम जब भटक गए ना लोग अपने अपने मूलों से, अपनी सांस्कृतिक सभ्यतागत दार्शनिक साहित्यिक वांग्मय जो हमारा है उसके मूलों से, उससे जब आप छिटक गए, उसके अपने कारण हैं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। तब क्या होता है कि हमने जो हमारी एक पीढ़ी थी जिनको एक प्रतीक कहीं भी लगा, उसको बचाए रखने का ही इतना रखा, ये प्रतीक क्या है, ये रूपक क्या है, इसके अंदर क्या अंतर्निहित आशय है, अर्थ है, स्थूलता स्थूल अर्थ क्या है, व्यंजना क्या है, उसकी जो शब्द की शक्तियां हैं तीनों स्तरों पे, वो क्या है, ये हमने जाना नहीं। हम क्या करते हैं, कहीं भी कोई मूर्ति दिखी, विग्रह देखा, तो उसे एकदम सिंदूर से पोत देते हैं
जी।
हमको लगता है सिंदूर पोत दिया तो सुरक्षित हो गई। तो कि सुरक्षा आपने किस चीज की, क्या चीज, एक मूर्ति, एक विग्रह, लेकिन उस विग्रह का अर्थ क्या है, उन अर्थों से, तात्पर्यों से हम छिटक गए। इसलिए हमारे पास जो है, जो मूल अर्थ है बातों के, बिंबों के, काव्य बिंबों के, मिथकों के, इन पौराणिक पात्रों के, देवियों के, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इवॉल्व जिनके होना होता है, ये सारी चीजें इससे छिटकने की वजह से ही हम फिर क्या होते हैं कि हम अनाज जैसे हो जाते हैं। कोई हमको कुछ भी कह रहे तो हम उधर की ओर भागते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो इतिहास ने कुछ दुर्घटनाएं घटी हैं हमारे इस देश में, वो कश्मीर कोई अपवाद नहीं है, कश्मीर में ज्यादा हुआ है। कश्मीर में 14वीं शताब्दी में इस्लाम के आने के बाद से जो रूपांतर कश्मीर का हुआ, जो कश्मीर का सांस्कृतिक सभ्यतागत और उसका इयता जो रूपांतरित हुई, एकदम कायांतरण उसका हुआ, और जो उसका चित्त का ये हुआ अंतर, चितांतर हुआ, तो वो जो चित्त बदला गया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे संस्कृति लूटी जा रही है, संस्कृति स्मृति लूटी जा रही है, ज्ञान के बदले दूसरा ज्ञान सामने दिया जाता है, इतिहास बदला जाता है, इतिहास में दखल की जाती है, इन सब षड्यंत्रों का, ये षड्यंत्रों के रूप हैं, अनेक हैं। अभी सांस्कृतिक एक संहार चल रहा है कश्मीर में, तो उसके चलते ये सारी चीजें हमसे छीनी जा रही है, टूट रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब आपने आज स्त्री की बात कही, तो ये बात बहुत की जा सकती है, कई स्तरों पे की जा सकती है, तो मैं कुछ स्त्रियों का उल्लेख भर करना चाहता हूं, जो एकदम हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा सुनना, कि ललजन एक ललेश्वरी संत हुई हैं, कवियत्री हुई हैं, आदि कवियत्री भी उसको कश्मीर में कहते हैं। और ये जो नवजागरण भारत में हुआ, भाषाई हो या भक्तिकालीन, उसकी वो एक वरिष्ठ कवियत्री हैं, कबीर से भी पहले की। मीरा, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, इनसे तो बहुत वरिष्ठ और ये हैं। और वो जो ललजद थी, अब ललजद जो थी, ललजद शैव थी, और चालू अर्थों में कहें तो घर में उसको ससुराल में सताया जाता था, और जो भी है वो तो एक उतना महत्व का नहीं है, क्योंकि उसको वो तिलांजलि देकर, घर को तिलांजलि देकर वो बाहर खुले में आती हैं। अब 14वीं शताब्दी में एक स्त्री और अपने पति को छोड़ सकती हैं। वो कहते ना तुलसीदास ने इनको कहा, मेरा कहा कि उसको त्याग दीजिए, अगर राम वैदेही के विरुद्ध कोई है
जी।
अब जो स्त्री के होने को, उनके अस्तित्व को नकारे ऐसी व्यवस्था, ऐसी चार दीवारी अगर है ललेश्वरी के पास आसपास, उसका घर, पारंपरिक रूप से उसकी सास, उसका पति, कोई साथ नहीं है, और प्रताड़नाएं मिलती हैं बहुत जबरदस्त, लाछन, अभियोग, उलाहने वगैरह हर रोज का। वो पहले तो सहती हैं, और उस सहन का भी एक हद होती है उसकी। जब वो हद पार करती हैं, तो वो इस सब को त्याग कर खुले में आ जाती हैं, यानी वो उन दीवारों को तोड़ती है, उन सीमाओं को तोड़ती है, उन मर्यादाओं को तोड़ती है, उन सभी वर्जनाओं को तोड़ करके खुले में आकर वो आकाश हो जाती है, वो खुले में आकर एक बहती हुई नदी हो जाती है, एक बयार हो जाती है, एक वो जो कहना चाहिए ना, खुला उन्मुक्तता। कौन सी उन्मुक्तता? मैंने जो कहा कि वैचारिक स्वराज्य की, स्वाधीनता की, वो शिव में अपना निदान खोजती हैं, समाधान खोजती हैं। शिव क्या है? शिव एक चेतना है, शिव एक अखंड जो चेतना प्रवाह का नाम शिव है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में भी मेरी भी और आप सबकी होनी चाहिए। शिव सूत्र एक है, शिव सूत्र में आचार्य वसुगुप्त लिखते हैं चैतन्यम आत्मा, ये जो चेतना है यही परमात्मा है, यही आत्मा है, यही सब कुछ है। चेतना का प्रवाह जो है ना, इसको बांधा नहीं जा सकता है। हम क्या लगे हैं? हम बांधने में लगे हैं, हम रिश्तों को बांधते हैं, तू मेरी बेटी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी प्रेमिका है, तू मेरी माँ है, तू मेरी है, ये जो मेरापन है ना, ये बांधना है, ये बंधन है। और ये जो चेतना प्रवाह है, इसको आप नहीं बांध सकते हैं। क्या नदी को बांध सकते हो? हवा को बांध सकते हो? तो कश्मीर के शैव दर्शन ने, विचार ने स्त्री को चेतना के रूप में देखा है, अखंड चेतना का प्रवाह। और हम आज क्या करते हैं? हम आज देखें तो, अब मैंने बंधन कहा ना, आप विमर्शों में उसको कैद कर दो, विमर्श करना ठीक है, विचार करना ठीक है, लेकिन विमर्श में कैद मत करो एक स्त्री को, एक दलित को, एक पिछड़े व्यक्ति को। विमर्श उसकी मुक्ति का उपकरण बने, उसका रास्ता बने, लेकिन उसकी कंडीशनिंग अगर आप करते हो, वो उन दायरों से, उस फ्रेम से बाहर ही नहीं निकलता है, या निकलती है, या निकलने की सोच सकती है, तो आपने उस की जो स्वाधीनता है, आप उसकी स्वाधीनता का अहित कर रहे हो, आप उसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हो। स्वतंत्र होना और स्वाधीन होना दो चीजें हैं, दो यथार्थ हैं। तो हम स्त्री के स्वातंत्र की बात करते हुए दरअसल स्त्री के स्वाधीनता की के प्रति उदासीन रहते हैं। हम बहुत बात करते हैं स्त्री स्वातंत्र की, लेकिन क्या आपके घर में जो मूल्य, जिन मूल्यों की आप, जो आदर्शों को आप पश्चिम से ला करके या पश्चिमी समाजों से प्रेरित होके आपने लाए, ठीक है अगर उपयोगी है तो ठीक है, लेकिन क्या वही आदर्श, वही स्थापनाएं आपके घर में अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन पर लागू होने से आप सच में बोलो खुश होते हो या आप अंदर से खींच जाते हो, नहीं चाहते हो मेरी बेटी भी ऐसे करे?
बिल्कुल सर।
लेकिन दूसरे की बेटी करे, दूसरे का घर उजड़े, दूसरे के घर तोड़ो, अपने घर को सुरक्षित रखो, ये जो उसमें अंतर्निहित एक विरोधाभास है, तो ये कहां का स्वाधीन होना हुआ? ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक तरह से परतंत्र होकर के आप एक बुलावे में, एक झांसे में अपने को रखते हो। स्वतंत्र है कि जब आप दार्शनिक दृष्टि से, अंतर्मन से, अंतर्दृष्टि से, मैंने जो शुरू में कहा कि आपके पास इससे बड़ा क्या रूपक हो सकता है, अर्धनारीश्वर, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, यानी हम दोनों इसमें सहअस्तित्व है, और सहअस्तित्व कोई दया के आधार पर नहीं है, रहम के आधार पर नहीं है, मैं कोई कृपा नहीं कर रहा हूं, एहसान नहीं कर रहा हूं कि तुमको जीने की इजाजत देता हूं, नहीं, ये अनिवार्यता है, ये सहअस्तित्व है समानता पर, जो तुम वो मैं, जितनी तुम उतनी मैं। तो ये जो ये भाव है, ये जो स्त्री स्वातंत्र का, स्वाधीनता का भाव मेरी परंपरा में है, मैं इसको चूंकि कश्मीर के साथ इसलिए जोड़ रहा, तुमने रखा ही इस तरह विषय है
जी।
तो जो मेरी पृष्ठभूमि है, तो उस पृष्ठभूमि में मैं तीन बड़ी उन पहले कवियत्रियों का उल्लेख करूंगा, उससे पहले आपको कुछ ये भी मैंने इनका भी कहा, नगर निर्माताओं में कश्मीरी स्त्रियां आगे थी, और उन्होंने नगरों का यानी टाउन प्लानिंग की है, कई नगर बने हैं, स्थापत्य तो छोड़िए, उसके तो असंख्य मिसालें आपको मिलेंगे कि कश्मीर की इस स्त्री ने, इस रानी ने, इस महारानी ने वो नगर बनवाया, ये नगर देख रेख की, युद्ध में गई, आपको 10वीं 11वीं शताब्दी की दिद्दा रानी का स्मरण करना चाहिए, बहुत ही आक्रामक, बहुत ही योद्धा, बहुत ही उन्मुक्त, और बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही साहसी और सहज, और चुनौतियों का हर तरफ चुनौतियों से घिरी होने के बाद वो कैसे जीती हैं। हम राजा राम मोहन राय की बहुत बात करते हैं, करनी भी चाहिए
जी।
सती सती प्रा, अरे कलहन की का इतिहास देखोगे तो जो रानी दिद्दा है उसने अस्वीकार किया सती होना, कहा मैं सती नहीं होंगी क्योंकि मेरा आधा शरीर ही अभी मर गया है, आधा तो जिंदा है ना, जब आप कहते हो अर्धनारीश्वर, अब आपका पति मरता है तो वो पति आधा भाग मरा ना, आधा तो जीवित है ना, तो वो आधा जीवित मैं कैसे अभी होम करने, इस आधे भाग की अभी कर्तव्य, इसका कर्तव्य है कि उनके अपना भी और उनके अधूरे छूटे कार्यक्रमों, इच्छाओं, सपनों को पूरा करना है, तो मैं सती होने से इनकार करती हूँ, वापस मुड़ती हैं। ऐसी कई मिसालें हैं, सती हुई भी है, ऐसी भी मिसालें हैं, लेकिन सती प्रथा का विरोध कश्मीर के इतिहास में है। तो इस तरह पुनर्विवाह का, विधवा विवाह का ये कोई इश्यू ही नहीं रहा है कश्मीर में, होता था सहज रूप से, संस्कृत में ही है देवर यानी दूसरा वर, ऐसा हमारे आचार्य कहते थे, ये उसका समाज शास्त्र है। तो संबंधों का समाज शास्त्र और फिर आपके देवी देवताओं के होने का जो उनकी है उसका समाज शास्त्र, इस दृष्टि से अध्ययन बहुत जरूरी है। जो हुआ है वो हमको देखना चाहिए, जो नहीं हुआ है वो हम उस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में कई रानियां हमारे पास हैं, सामराज्ञियां मैंने जो कहा, जो बड़ी ही उल्लेखनीय है इतिहास में, और इसी तरह मैं तीन चार बहुत ही यशस्वी कवियत्रियां हमारी हुई हैं। सबसे पहले मैंने जो शुरू में कहा था कि 14वीं शताब्दी में ललेश्वरी ललजत, और ललजत जो निकली, तो ललजत जो बाहर आई तो ललित का जो बहुत ही आज तक उनका कोई मुकाबला नहीं है। और प्रसंगवश मैं आपसे कहूं कि ललित को लेकर के पूरे देश में बहुत जिज्ञासा है जानने की, ललित के बारे में, ललित के काव्य के बारे में, जीवन के बारे में। और कुछ अनुवाद भी हुए हैं उनके, और अंग्रेजी में हुए हैं, हिंदी में भी कुछ हुए हैं। लेकिन मैंने मेरी प्रकाशन प्रकाशक को दी हुई किताब है, प्रकाशन उसका हो रहा है, मैं ललित नाम से मैंने काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा उनके चरित्र को लेकर के। मैं ललित, तुमको बहुत अच्छा लगे अभी आने वाली है पुस्तक, तो मैं उसके दो वाक उसके छंदों को बोलते हैं, जैसे पद होते हैं ना, मैं उनका कश्मीरी तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय चला जाएगा, मैं उनका हिंदी सुनाता हूँ आपको।
जी सर,
ये ललेश्वरी के काव्य को वाक कहते हैं, यानी इस तरह लल वाक, वाक यानी चतुष्पदी जैसे आपके होता है
जी।
वो कहती हैं, ये मैं अनुवाद सुना रहा हूँ, कश्मीरी तो है, तल छुई जुस ताई पैठ छुख नचान, वंत माले मन कित पचान छुई, सोरी स्वमृत येत छुई मचान, वंत माले अन कित रोचान छुई। क्या कहती हैं, नीचे है खड्ड तुम्हारे, ऊपर है तू नाच रहा, मन कैसे देता साथ तुम्हारा, सब जोड़ जुटाकर छूटता पीछे, कैसे रुचता है अन्न। इसी तरह ये कहती है, एक बुद्धिमान को देखा मैंने भूखो मरते, एक बुद्धिमान को देखा मैंने भूखो मरते, पौष की शीत हवा में झरते देखा जैसे पत्ता, एक बावर्ची को निपट मूर्ख से पिटते देखा, तब से मैं बाट जोहती, कब मेरे बंधन छूटे। ये ललित हैं। और दूसरी एक झलक मैं देता हूं, उनके बाद एक बहुत बड़ी कवियत्री हुई हैं रूपा भवानी। ये 17वीं-18वीं शताब्दी में जब औरंगजेब दिल्ली का राजा था और उसके अत्याचारों की बहुत अति हुई थी, और उसने 14 बार नए नए गवर्नर कश्मीर भेजे थे, और अंतिम था इफ्तिकार खान, और उसे साफ निर्देश था, इतिहास से कह रहा हूं मैं, लोग तो जुटलाने पर तुले हैं, अच्छा नहीं लगता उनको औरंगजेब की अच्छाई सुनना, मतलब सच्चाई सुनना, सत्यता सुनना। तो वो आया था कन्वर्ट करने के लिए, उनका कश्मीरी हिंदुओं का पूरा धर्म परिवर्तन यानी उनका कर दो। तो ऐसे समय में वहां थी रूपा भवानी। रूपा भवानी भी बहुत जबरदस्त बड़ी संत थी, कवियत्री थी, और ये 200-250 साल के बाद हुई है उनसे। ये 17वीं-18वीं शताब्दी में थी, जबकि ललित 14वीं शताब्दी में थी। अब ये स्त्री जो है कश्मीरी स्त्री रूपा भवानी, और ये फारसी जानती थी, ये संस्कृत जानती थी, ये हिंदी की पहली कवियत्री है कश्मीर में, इसे हिंदी में भी लिखा है। ये संस्कृत मैंने कहा, फारसी मैंने कहा, हिंदी मैंने कहा, और फारसी जानते तो उर्दू तो जानते हो, तो ये 4-5 भाषाएं जानने वाली रूपा भवानी शैव थी, सन्यासिन भी थी और यायावर भी थी। तो यायावरी में इसने यायावर मैंने कहा तो मुझे फिर से याद आ गया, पीछे छूट गया प्रश्न, जैसे बिलहन मैंने कहा कि कर्नाटक पहुंच गया था जिसने विक्रमांगदेव, इसी तरह उससे पहले उसके जब अक्का महादेवी कर्नाटक में होती हैं बसवेश्वर जमाने में, तो उस वीर शैव परंपरा में एक बड़ी शैव शरणी कहते हैं कन्नड़ में, जिन्होंने वचन साहित्य लिखा है, उस वचन साहित्य में एक प्रमुख कवियत्री या शैव शरणी थी बोंथा देवी। और बोंथा देवी कौन थी, कश्मीर की एक स्त्री थी। ये कश्मीर से चलकर कर्नाटक जाती हैं, कल्याण जाती हैं, वहां ये बोंथा देवी है, और एकदम अक्का महादेवी के आसपास का समय है, और ये उसने वचन कहे, और पूरे कन्नड़ समाज में, कर्नाटक समाज में, तेलुगु भाषी समाज में, यहाँ नीचे तक 3-4 राज्यों में उसका आज भी बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। तो यानी कश्मीर की स्त्री इतनी यायावर भी थी, उसी इच्छाएं, वो ये नहीं थी, बिहड़ यात्राएं भी करती थी। खैर, इसी तरह रूप भवानी भी यायावर थी। ये घर से निकली और घर घर गई, जगह जगह घूमी, स्त्रियों से उसके संवाद थे, बच्चों के साथ संवाद थे, अत्याचारों और उत्पीड़नाओं के प्रति कैसे उससे सामना किया जाए, कैसे अपने धर्म को, सत्ता को, संस्कृति को बचाया जाए, स्त्री प्रश्नों को लेकर के वो काफी जागरूक महिला थी, संत कवित्री रूपवाणी। उसके मैं दो सुनाता हूँ, अलग से करना हो तो घंटों बात की जा सकती है।
बिल्कुल अलग से होना भी चाहिए सर, मुझे तो लग रहा है आपकी बात सुनकर।
मैं उनके एक देखो क्या कहती हैं, इनके भी वाक हैं चार पंक्तियों के, मैं अनुवाद ही सुनाता हूँ आपको अपने मेरे किए हुए। मनुष्य हैं वे ही, अब देखिए साफ कहती हैं किसको मैं मनुष्य कहूं, किसे आप मनुष्य कहना चाहिए। मनुष्य हैं वे ही भूले नहीं निज रूप। अब हमने निजता की बात की ना, हम छिटक गए हैं अपने मूलों से, संस्कृति से, हर एक चीज से। रूप भवानी कहती है मनुष्य हैं वे ही भूले नहीं निज रूप, पशु हैं वे जर जर वही को पहुंच, पुण्यहीन देह होते फिर सचेत, खाली पात्र नहीं आता काम किसी के। अब दो टूक बात कर रही है, क्रांति धर्मी है उस समाज में, और जहां तक ब्रह्मांडी है उसकी बात है, चेतना की बात कहती है। रूप चराचर वह व्यापी। अब देखिए कश्मीर की दर्शन की जो परंपरा है उसने कहा कि जड़ चेतन में भी अंतर कोई नहीं है, चर और अचर में भी एक ही सत्ता का व्याप्त है। वो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं, जो शताब्दी पुरुष हैं, कहते हैं रू आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं संस्कृत में भैरव स्तोत्र में, व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयम एतद अनंतम अनादिम। लंबा है तो वही चराचर भाव जो है। अब देखिए रूप भवानी 17वीं-18वीं शताब्दी में कहती है, हिंदी अनुवाद मेरा, रूप चराचर वह व्यापी प्रवाहमान है परम गति, पूर्णता जड़ चैतन्य को देता देह क्षुधा की तृप्ति, स्वामी वह समर्थ है पूर्ण करता परमार्थ का विधान, अंतर्मुखी दृष्टि से साधक पाता वही निर्माण की परम गति। अब इसकी निर्माण की परंपरा मुक्ति और स्वाधीनता की बात आप देख सकते हो। इसी तरह ये बिल्कुल बिल्कुल ये स्वाधीन स्वातंत्र जिसको कहना चाहिए ना, इनका अपना स्वराज्य है, चिंतन का स्वराज्य है, वहां मुक्त है। स्वतंत्रता तो एकदम राजनैतिक है, भौगोलिक है, सत्ताजन्य है, आपको फ्रीडम है जी ट्रेवल करने का, वो करने का, आपको ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए, ये स्वतंत्रता से जुड़ी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन स्वाधीनता जिसे आप कहते हैं, अपने अधीन हो जाना, अपने अधीन हो करके अपनी स्वायत्तता का निर्वाह करना, जीना उसको, और वहां स्वाधीन जो आपके विचारना है, विचार हैं, प्रेरणाएं हैं, उनमें कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, और वो जो उन्मत्त आकाश होना है, वो जो कश्मीर का शैव दर्शन कहते हैं चर अचर में व्याप्त होना है, इतना व्याप्ति का नाम है स्वाधीनता। तो इसी तरह हमारे एक और हैं, फिर अरनिमाल एक और कवियत्री हैं, उनसे पहले हबा खातून हुई हैं। हबा खातून तो खैर अकबर के समकालीन थी और वो प्रेम और विरहणी स्त्री के रूप में ही जानी जाती हैं। गीत गाए उसने, विरह के गीत गाए, लेकिन उसका स्थान है साहित्य में है। और उनके बाद हमारे पास अरनिमाल आती हैं। अरनिमाल भी, जहां मेरा अग्निशेखर में बात कर रहा हूँ, जहां मेरे ननिहाल जिसको कश्मीरी में माता माल कहते हैं, हम ननिहाल को माता माल कहते हैं, जहां की माता है, जहां माता का मायका है, तो उसको माता माल शब्द कहते हैं। तो जहां मेरा माता माल गांव में, उसी गांव के बगल के गांव में पलहालन में की रहने वाली थी अरनिमाल। और अरनिमाल भी कश्मीर के समाज जीवन में बहुत ही अपनी अति सूक्ष्म संवेदनाओं के लिए, प्रेम के लिए, और प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए, प्रेम उस सर्वस्व त्याग में अनंत प्रतीक्षा के लिए जानी जाती हैं। और एक बहुत बड़ी उन्होंने संवेदना का, कश्मीर की संवेदना को संवारा है। तो इस तरह जो अब बात को अगर हम उपसमाहार की तरफ ले जाएं, उसको समेटना करें, जैसे जाल समेटते हैं ना, तो कई चीजें छूट जाती हैं, कई चीजें रह जाती हैं। तो मैंने कहा कि जब हम एक स्त्री स्वातंत्र या स्त्री जो स्वाधीन ताकि उसके बोध हैं, ये उसका उजला पक्ष है जो पृष्ठभूमि में है। लेकिन उस पृष्ठभूमि स्त्री को देखें आज, जिस पर विचार करना चाहिए, वह क्या क्या ऐसी, मैंने देखा, मैंने तुमको ये कहा कि कश्मीरी स्त्री जो शरणार्थी हुई तो उसके संघर्ष और उसका उस सहयोग, इसी तरह जो कश्मीर की मुसलमान स्त्री वहां है उसका उसका उस पर भी विचार करना चाहिए, उस पर दबाव या उसका दबाव या उसकी भूमिका, उसकी सहकारिता। क्या स्त्रियां माताओं के रूप में, पत्नियों के रूप में, अगर कम, अगर मान लीजिए पत्नियों के रूप में कम अधिकार हैं, लेकिन माताओं के रूप में कितना प्रभाव होता है बच्चों पर, जो 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 बच्चे बर्बर हिंसा अत्याचार बलात्कार जिन्होंने इतना नरसंहार कश्मीर में किया, उसके विरुद्ध कश्मीर की स्त्री जो मुसलमान स्त्री है उसकी भूमिका पर कितना काम हुआ है, कितना सहकार है या कितनी बेबसी है, क्योंकि इन इन विषयों पर अभी खुलकर बात नहीं की जाती है।
जी बिल्कुल, आपने सही बात उठाई सर। ये
जब माताएं करें ना, माताएं विरोध करें, माताएं प्रोटेस्ट करें, प्रतिरोध करें, उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है।
बिल्कुल,
अगर पूरा नहीं हो सकता है तो बहुत हद तक हो सकता है। तो उन प्रश्नों को लेकर के हमारा साहित्य क्या कहता है, हमने साहित्य की दृष्टि से देखना है। मैं चूंकि जो ये निर्वासन में साहित्य आया है और मैंने अभी 49 कश्मीरी निर्वासित कवियों की कविताओं का चयन किया, अनुवाद किया, संपादन किया और वो हम जलावतन शीर्षक से प्रलेख प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया अभी 2 महीने पहले, और वो amazon.in पर भी है। जो मित्र मेरी बात सुन रहे हैं या मेरी बात को सुनकर प्रेरणा अगर उनको होती होगी तो वहां से amazon.in से हम जलावतन मांगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि उस उन 49 कवियों की कविताओं में स्त्री को देखें, उसके संघर्ष को देखें, उसके साथ हुए अत्याचार बर्बरताओं को देखें और वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर उनके उस विमर्श को भी देखें जो स्त्रियों ने यहाँ खड़ा किया अपना, फिर से खड़ा होने का। और इसी तरह अगर आप निर्वासन साहित्य को समग्रता में देखें तो इसमें मुख्य रूप से घर है, हमारे पूरे निर्वासन से। और घर का दूसरा जो पर्याय हो सकता है वो है माँ, वो है स्त्री, वो है पत्नी। घर जैसे माँ के पास बच्चे जाते हैं, इसी तरह हम घर के पास जाते हैं। घर एक माँ होती है हमारे संदर्भ में, और वही माँ वही घर जब हमारा टूट गया फिर अब नए सिर से घर बनाया, उस घर के टूटने छूटने लुटने या छीन लिए जाने या ढहा दिए जाने जला दिए जाने के वेदना के बाद जो आप घर बनाते हैं, ये दोनों चीजें तो होंगी ना, केंद्रीय संवेदना की तरह, केंद्रीय बिंब की तरह, केंद्रीय विचार या वस्तु सत्य की तरह। इस निर्वासन साहित्य में, पूरे निर्वासन साहित्य में घर है और घर का मतलब है माँ, घर का मतलब है स्त्री। और इस तरह दृष्टि से देखें तो कई आपको कविताएं मिलेंगी। किसी ने एक शोधार्थी ने कभी इसी विषय पे बात की थी, निर्वासन साहित्य में स्त्री, तो सर आपके पास आपने कुछ लिखा है तो मैं उसको क्या कहता, जब मैंने उसको अपने संग्रह दिए तो उसका कहना था बाद में, सर मैंने तमाम लोगों के संग्रह देखे, कविताएं देखे, अधिकांश कविताएं स्त्रियों पर तो आप ही के कविताओं में मिली। तो मैंने कहा तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कोई ये नहीं हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई सचेत या सतर्क हो के आपने नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा मानना है एक पुरुष के नाते, एक कवि के नाते, नागरिक के नाते तो मैंने बात की कि हमारे साथ क्या हुआ कैसे नहीं हुआ वो छोड़िए, कवि के नाते भी मैं आपसे कहता हूं कि एक पुरुष में जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितनी भी रचनात्मकता उसमें है, वो स्त्री नामक ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा का प्रतिफलन होता है। आप कविता लिखते हैं तो आपके अंदर एक कवि आपके अंदर एक स्त्री होती है जो कविता लिखती है, भले ही आप पुरुष हो, अग्निशेखर हो। आपके आप अगर कलाकार हैं, पेंटिंग करते हैं, तो आपके अंदर एक स्त्री है। आप में जितनी अच्छाइयां हैं, जिन्हें हम अच्छाइयां कहते हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं ली जानी चाहिए। आपके अंदर एक जितनी भी रचनात्मकता है, रचनात्मकता एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम एक स्त्री पक्ष की कह सकते हैं पुरुष का। पुरुष के अंदर जो स्त्री है वही ये सब चीजें करती है। और इसी तरह स्त्री में जो जीवट है, एक स्त्री में जो सामना करना की बात है, लोहा लेती है, टूटती नहीं है, बहुत ही पीड़ित होती है, फिर जीती है, फिर जीने जिलाने में लगी रहती है। मैं समझता हूं ये शिव पक्ष है उसका, जिसे हम कहते हैं ना अर्धनारीश्वर। तो ये मेरा एक कवि के नाते और इस निर्वासन साहित्य में आपको मेरी, मैं कभी खुद देखता हूँ जो 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 स्त्रियां हमारी अपहृत हुई, मारी गई, विक्टिमाइज की, चाहे सरला भट्ट थी, चाहे सुमित्रा थी, अलग अलग से कविताएं हैं। आप चाहें तो मैं अपनी एक कविता सुनाकर अपनी बात को ये करना चाहूंगा। देखो स्त्रियों का मेरी माताएं मेरी एक शीर्षक से कविता है। अब देखेंगे सभी माताओं को मैंने लिया है। माताएं कर रही हैं इंतजार, सीमा पार गए सिर फिरे बच्चों का, दुआएं मांग रही हैं माताएं पहाड़ों के उधर से उनके सही सलामत लौटने की। माताएं नींद में ढूंढती हैं बच्चों को पाकिस्तानी ट्रेनिंग शिविरों में, और देखती हैं खिड़की से निचाट आसमान। माताएं शरणार्थी कैंपों के चिथड़े तंबुओं में डांट रही हैं भूख से बिलख रहे बच्चों को। माताएं शरणार्थी कैंपों के चिथड़े तंबुओं में डांट रही हैं भूख से बिलख रहे बच्चों को, उन्हें लगाती हैं अपनी निचुड़ी छातियों से। ध्यान दीजिए, निचुड़ी छातियां, तो कुछ नहीं है बेचारों से। उन्हें लगाती हैं अपनी निचुड़ी छातियों से और सुबकती हैं देर तक, देर रात तक माताएं, और सुबकती हैं देर रात तक माताएं अपने हाल पर, हैरान हैं बेदखली के सवाल पर। माताएं देख रही हैं कश्मीर में तैनात सैनिक बेटों की राह, शाम को देखती हैं टीवी पर खबरें पत्थरबाजों के खूनी हमलों से उनके सूख जाते हैं प्राण। अपने देवताओं से मांगती हैं बच्चों की खैर, बिलख रही हैं माताएं सह रही आघात, कोई नहीं कर रहा इस युद्ध में माताओं की बात। तो इस अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तुमने मुझसे माताओं की बात करने का अवसर दिया, स्त्रियों की बात करने का अवसर दिया। मैं कितनी बात कर सका, क्योंकि उस समय इसमें अनंत चाहिए, क्योंकि ये हरि अनंत कथा अनंता है, व्याप्त है। स्त्री ही जब सृष्टि है, सृष्टि अपने में स्त्रीलिंग स्त्रीवाची शब्द है, ये सृष्टि ही जब स्त्री है तो हम तो क्या हैं, हम तो छोटे मोटे साहित्य में सर्जक कहने से भी संकोच करते हैं। और इस दिवस पर माताओं, स्त्रियों के अधिकारों, स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों, उनकी स्थिति को बेहतर करने के प्रयासों की कामना, पुरजोर कामना और पुरजोर मांग करते रहने में ही हमारा होना साबित हो सकता है, सार्थकता हमारे होने की, कि एक भी स्त्री की आंखों से आंसू न ढुलके। जब तक एक भी किसी भी निरीह स्त्री की आंख से आंसू ढुलकेगा, तब तक पुरुष की सत्ता को धिक्कार है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। स्त्रियां ही हमारा सम्मान है, अस्तित्व है, आदर है।
सर, आपकी बात सुनकर गर्व भी हो रहा है कि आपने उस प्रदेश की, कश्मीर की महिलाओं से परिचय हमारा कराया जो इतनी सम्माननीय है हर क्षेत्र में। लेकिन मन भावुक हो गया सर आपकी बातों को सुनकर, और जी। क्या बोलूं सर, इतना गहन चिंतन है आपका, इतना सुंदर विश्लेषण, इतने सुंदर शब्द निशब्द हूँ मैं तो, कुछ कहने के लिए है ही नहीं मेरे पास।
ये आपका बड़प्पन है।
नहीं नहीं सर, एक एक शब्द उसके एक एक भाव को जैसे आप तराश कर प्रस्तुत करते हैं सर, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कह रही हूँ, मैं मतलब यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं हर किसी को ये बात कहती हूँ आपके लिए, और आधुनिक साहित्य और हमारी संस्कृति को उसके मूल से परिचित करवा देते हैं सर आप।
ये तो आपका बड़प्पन है भावना जी।
नहीं सर, और सर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अगर आज की हम आपकी बात को सुनकर कोई ऐसा सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हुए हम थोड़ा संकुचित हो गए और सिर्फ कश्मीर की बात पर ही रह गए, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कश्मीर दर्शन में जो बात है वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो इस तरह से हमने सिर्फ कश्मीर ही नहीं पूरे विश्व की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है।
आपने सही कहा, कश्मीर के बहाने हमने बात की, कश्मीर को एक रूपक मानकर बात की, कश्मीर को एक इतिहास का एक प्रतीक, स्त्री प्रश्न का को से जोड़कर हमने उस बहाने वृहद धरातल पर बात की। जब हमने ये कहा कि व्याप्ति की बात की, चर और अचर की, अखंड ब्रह्मांडीय अखंड चेतना का नाम हमने स्त्री को दिया, तो ये कहाँ सीमित है, ये तो उनकी सोच सीमित हो सकती है जो ऐसा दुर्भाग्य से सोचे, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री एक व्याप्ति का नाम है, मैंने कहा ना स्त्री क्या है, स्त्री एक सृष्टि का नाम है भाई
जी।
जब सृष्टि कहते हो तो उसे कश्मीर थोड़ी है या लखनऊ तुम्हारा थोड़ी है
जी, बिल्कुल
ये सृष्टि ही स्त्री रूप है हमारे लिए, तो वो सृष्टि तो माता है, जगत माता है, जगत अम्बा का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये क्या, ये क्या, ये किसी पहाड़ किसी आसमान में रहने वाली स्त्री थोड़ी है, ये तो चेतना है भाई, ये तो प्रवाह है चेतना का।
इसलिए हमने बात आपकी अगर हम ध्यान से सुने तो आंखें खोलने वाली है, बिल्कुल सर।
चलिए आपका बड़प्पन।
नहीं सर ऐसा ना बोले, और आपकी मैं आभारी हूँ, आप इतना आपने हमको समय दिया और कह नहीं सकती कि कितना मुझे अच्छा लगा, और जरूर हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा,
लगना चाहिए। मैं उनको कहूंगा, उनके लिए कहूंगा फिर रूप भवानी जो 18वीं शताब्दी की एक पंक्ति दो पंक्ति उसकी कहूंगा, जो आपने कहा ना संकुचन कहीं नहीं है, ये उनकी सोच का संकुचन हो सकता है अगर किसी को लगा, ये पहले तो नहीं लगेगा। मेरा रूप भवानी अपने एक वाक में कहती है, अरे मनुष्य है वह जो कराता अमृत की नदी में तृप्त, पंडित है वह, अब पंडित कोई भी हो सकता है, और जानना चाहिए कश्मीर में पंडित सब लोगों को, हिंदुओं को कहा जाता है, वो ब्राह्मण तो हैं लेकिन ब्राह्मणवादी जिनको आप कहते हो वो नहीं, हमारे यहाँ जात पात नहीं होती
जी, जी।
कश्मीरी पंडितों में जात पात ही वर्ण होते हुए जाति नहीं है, तो इसलिए यहाँ रूप भवानी कहती है पंडित है वह जो कराता अमृत की नदी में तृप्त, वेद वाक्यों के अर्थों को चतुर्दिक प्रवाहमान, षोडश चंद्र कलाओं का करता समन्वय, बनता समदर्शी, अर्चना का पात्र निर्मल, स्तोत्र गायक, कर सकता स्तवन प्रामाणिक, अखिल जगत, तुम तो कश्मीर की बात कह रहे हो कहेंगे, यहां है अखिल जगत का बनता गुरु लाखों में एक, अंतर्मुखी दृष्टि निर्माण रहस्य की वही, पाता परम गति, और वो परम गति हम सबको मिले, हम सब पाए, स्त्री पुरुष पूरा देश पाए, और हम पर जो स्त्रियों के साथ हुए अत्याचारों का शाप और पाप है वो उससे भी हम भी मुक्त हो जाएं। धन्यवाद आपका, बहुत
बहुत आभार सर। नमस्ते सर, प्रणाम।
नमस्ते, प्रणाम।